ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयाम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम महापुराण की जय। तो आज का श्लोक संख्या 25, स्कंद 5, अध्याय 19 और अध्याय का नाम है जम्बूद्वीप का वर्णन। प्राप्त न जाते तो इह ये च जंतव। ज्ञान क्रिया द्रव्य कलाप संभ्रता। न वैयतेरन्न अपुनर्भवायते। भूयो वनौका इव यान्ति बन्धना। प्राप्तः, जिन्होंने प्राप्त कर लिया है। नर जाते, मनुष्य समाज में जन्म, तो निश्चय ही इह इस भारत देश में ये वे जो च भी जंतवा जीव ज्ञान ज्ञान से क्रिया कर्म से द्रव्य पदार्थों के कलाप समूह से संभ्रताम पूर्ण न नहीं वै निश्चित रूप से यतेरेना प्रयत्न अपुना भवाया अमर पद के लिए ते ऐसे व्यक्ति भूय पुनः वनौका पक्षियों इव जैसा यान्ति जाते हैं बंधनाम बंधन को। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की भक्ति के लिए भारतवर्ष में उपयुक्त क्षेत्र तथा परिस्थितियां उपलब्ध हैं। जिस भक्ति से ज्ञान तथा कर्म के फलों से मुक्त हुआ जा सकता है। यदि कोई भारतवर्ष में मनुष्य देह धारण करके संकीर्तन यज्ञ नहीं करता तो वह उन जंगली पशुओं तथा पक्षियों की भांति है जो मुक्त किए जाने पर भी असावधान रहते हैं और शिकारी द्वारा पुनः बंदी बना लिए जाते हैं। कृपया मेरे पीछे दोहराइए। भक्ति के लिए भारतवर्ष में उपयुक्त क्षेत्र तथा परिस्थितियां उपलब्ध हैं। जिस भक्ति से ज्ञान तथा कर्म के फलों से मुक्त हुआ जा सकता है। यदि कोई भारतवर्ष में मनुष्य देह धारण करके संकीर्तन यज्ञ नहीं करता तो वह उन जंगली पशुओं तथा पक्षियों की भांति है जो मुक्त किए जाने पर भी असावधान रहते हैं और शिकारी द्वारा पुनः बंदी बना लिए जाते हैं। तात्पर्य, भारतवर्ष ऐसा देश है जिसमें स्वर्णम कीर्तनम विष्णु वाले संकीर्तन यज्ञ को अथवा स्मरणम अर्चनम दास्यम सख्यम तथा आत्मनिवेदनम जैसी अन्य भक्ति विधियों को सरलता पूर्वक संपन्न किया जा सकता है। भारतवर्ष में ही अनेक पवित्र स्थानों को देखने का अवसर प्राप्त है जिनमें श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान नवद्वीप तथा भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान वृंदावन मुख्य है, जहां के अनेक शुद्ध भक्तों की एकमात्र अभिलाषा भक्ति है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, इस प्रकार से प्राणी भौतिक बंधनों से छूट जाता है। अन्य मार्ग यथा ज्ञान मार्ग तथा कर्म मार्ग उतने लाभप्रद नहीं है। पुण्य कार्यों से स्वर्ग प्राप्त हो सकता है और ज्ञान मीमांसा से भ्रम भूत हुआ जा सकता है, किंतु यह वास्तविक लाभ नहीं, क्योंकि मनुष्य को पुनः नीचे आना पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान के धाम वापस पहुंचने के लिए प्रयास करे, यान्ति मद्या जिनोपिमनाम। अन्यथा मनुष्य जीवन तथा जंगली पशु पक्षियों के जीवन में कोई अंतर नहीं है। पशु तथा पक्षी भी स्वतंत्र होते हैं, किंतु निम्न योनि में जन्मने के कारण वे स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर पाते। अतः भारतवर्ष में जन्म लेने वाले प्रत्येक मनुष्य को जो भी सुविधाएं प्राप्त हैं उनका उपयोग करते हुए उसे प्रबुद्ध भक्त बनकर भगवान के धाम वापस जाना चाहिए। कृष्णा भावनामृत आंदोलन का यही विषय है। भारतवर्ष के अतिरिक्त अन्य सभी देश के वासियों को भौतिक सुख सुविधाएं तो प्राप्त हैं, किंतु उन्हें कृष्ण भक्ति प्राप्त करने की वैसी ही सुविधा प्राप्त नहीं है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है कि जिस किसी ने भारत भूमि में मनुष्य रूप में जन्म लिया है उसे अपने आप को श्री कृष्ण का अंश मानना चाहिए और कृष्ण भावनामृत प्राप्त कर लेने के पश्चात समग्र विश्व में इस ज्ञान का वितरण करना चाहिए। यहाँ श्रील प्रभुपाद का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त हुआ। श्रील प्रभुपाद की ओम। अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्ठां स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽं श्रीगुरो श्रीयुत्पत्कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाक्ष च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथवितं तं सजीवं सावदेतं सावदूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानमिताक्ष। नमोम विष्णुपादाय कृष्णापृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ पंचतत्व आत्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तवतारम भक्ताख्याम नमामि भक्तशक्तिकम नमो महावदन्ये कृष्णो प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत् कृपातहं वंदे परमानंद माधवं श्री गुरु दीन तारणं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो श्री वृंदावन धाम में प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सभी भगवत प्रेमियों का बहुत बहुत स्वागत है। नित्यम भागवत सेवया आप भागवत का श्रवण कर रहे हैं और आज का जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्राप्त नरजातिं त्वईह ये च जन्तवो ज्ञान क्रिया द्रव्य कलाप संभ्रतां न वैयतेरेन्न अपुनर्भवायते भूयो वनौका इव यान्ति बंधनम्। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि भारतवर्ष बता रहे हैं भक्ति के लिए यहाँ पर उपयुक्त परिस्थितियां उपलब्ध हैं, भक्ति के लिए यहां पर परिस्थितियां उपयुक्त हैं, फेवरेबल कंडीशंस यहां पर उपयुक्त हैं, जिससे ज्ञान तथा कर्म के फलों से मुक्त हुआ जा सकता है। तो श्लोक का तात्पर्य, श्लोक का अर्थ कहता है कि भक्ति ऐसी भक्ति जिसमें से आप कर्म और ज्ञान, कर्मफल और ज्ञान से दोनों से मुक्त होकर के आपको भक्ति करनी है, ऐसा यहां हो सकता है। यदि कोई भारतवर्ष में मनुष्य देह धारण करके संकीर्तन यज्ञ नहीं करता तो वह उन जंगली पशु और पक्षियों की भांति है जो मुक्त किए जाने पर भी असावधान रहते हैं और शिकारी द्वारा पुनः बंदी बना लिए जाते हैं। अब इस श्लोक में दो तीन बातें विचार करने की है। एक तो ये निर्जातिम जिसको मनुष्य देह प्राप्त हुई है वही भक्ति कर सकता है, अन्य कोई योनि में भक्ति नहीं की जा सकती। इसी बात को 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण उद्धव से भी कहते हैं। कौन सा श्लोक है? न देहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्महा। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं कि जीवन का समस्त लाभ दिलाने वाला मानव शरीर प्रकृति के नियमों द्वारा स्वतः प्राप्त हो जाता है। सुलभम सुदुर्लभम, ये सुलभता से मिल गया, हमको इसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा। लेकिन है कैसा? सुदुर्लभम, दुर्लभ वस्तु सुलभता से नहीं मिलती संसार में। दुर्लभ वस्तु के लिए क्या करना पड़ता है? कठोर परिश्रम करना पड़ता है। लेकिन कृष्ण कह रहे हैं ये दुर्लभ वस्तु, ये मनुष्य शरीर आपको सुलभता से प्राप्त हो गया है। कैसे प्राप्त हो गया है? प्रकृति के नियमों द्वारा। प्रकृति के नियमों द्वारा आपका भाग्य उदय हुआ और आपको यह शरीर प्राप्त हो गया। सुलभम सुदुर्लभम मया अनुकूलेन नभस्वतेरितम। उसके बाद है प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम, और इस मनुष्य शरीर की तुलना जो है एक बड़ी सुंदर नौका से इसकी की जा सकती है, इसकी तुलना जिसका जो नाविक है वो कौन है, गुरु है। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम, गुरु जो है इस नौका को चलाने वाला है, ये शरीर रूपी नौका को चलाने वाला गुरु है। नौका हमको प्राप्त हो गई, अब नाविक चाहिए, तो नाविक गुरु के रूप में हमारे को लेना है। और आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव को, मया अनुकूलेन नभस्वते रितम, जो मेरे आदेश हैं, जो मेरे आदेश हैं वो अनुकूल वायु है जो इस नाव को आगे बढ़ाती है। अगर अनुकूल वायु नहीं होगी तो नाव आगे नहीं बढ़ेगी। मया अनुकूलेन नभस्वते रितम, और उसके बाद है पुमान भवाब्धिम न तरेस आत्महा। तो ऐसा होने पे आपको मनुष्य शरीर प्राप्त हो गया, आपने गुरु को स्वीकार करना है, गुरु को स्वीकार करके इस नैया को पार लगाना है। अगर ऐसा आप नहीं करते, मनुष्य शरीर प्राप्त कर लेने के बाद अगर आप गुरु को स्वीकार नहीं करते, अगर आप भगवान के आदेशों का पालन नहीं करते, तो आप अपने ही आत्मा का हनन करने वाले हैं, यानी आप अपनी ही आत्मा के हत्यारे हैं। वही आज इस श्लोक में बताया जा रहा है कि अगर आप मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद संकीर्तन यज्ञ नहीं करते, तो फिर शिकारी के द्वारा पुनः बंधन में आ जाओगे। एक पक्षी, एक पशु, जंगली पशु जो मुक्त हो गया, किसी तरीके से मुक्त हुआ, फिर बंधन में आ जाएगा अगर उसने भगवान के आदेशों का पालन नहीं किया। तो अब श्लोक में क्या मुख्य बात है? मुख्य बात यह है कि मनुष्य शरीर होना चाहिए भक्ति के लिए। तो मनुष्य शरीर हम सबको प्राप्त है, इसमें कोई शंका नहीं है। अब इस श्लोक में जो दूसरी बात आती है वो आती है ज्ञान क्रिया द्रव्य कलाप संभृताम। तो हमारी जो भक्ति है वो कैसी होनी चाहिए? पहले तो भक्ति क्या होती है, भक्ति क्या होती है, इसको रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बड़े सरल शब्दों में हमको समझाते हैं। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। हमको जो शरीर मिला है, हमारे शरीर की इंद्रियों से जो परम नियंता हैं, जो परम भगवान हैं, उनके इंद्रियों की सेवा करना, इसको भक्ति कहते हैं। और साधारण सी परिभाषा है भक्ति किसे कहते हैं। लेकिन भक्ति के कई रंग होते हैं। आपके भक्ति करने के पीछे क्या प्रयोजन है, या तो आप जानते हैं, या आपके अगर गुरु हैं तो वो जानते हैं, या भगवान जानते हैं, और तो कोई नहीं जान सकता। आपके भक्ति करने के पीछे क्या प्रयोजन है, आप कैसी भक्ति कर रहे हैं। ज्ञान क्रिया से मुक्त है, ज्ञान से और सकाम कर्म से मुक्त है कि नहीं। सकाम कर्म का मतलब क्या होता है? अगर आपको भक्ति करने के लिए आप कुछ पाना चाहते हो, भक्ति आप इसलिए करते हो कि उसके बदले आप कुछ चाहते हो, इस संसार में कुछ चाहते हो, या इस संसार के जाने के बाद आप चाहते हो, आप उच्च लोगों को जाना चाहते हो, आप स्वर्ग भोगना चाहते हो, जब भोग की इच्छा लेकर के हम भक्ति करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सकाम भक्ति, जो कि यहां पर बताया गया है क्रिया, ज्ञान क्रिया। और जब हमारे भोग की इच्छा नहीं है, हमें संसार से मुक्त होना चाहते हैं, हमें संसार अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम भगवान में लीन होना चाहते हैं, हम भगवान बनना चाहते हैं, हम बहुत बड़ा बनना चाहते हैं, तो ये भी एक तरीके से हमारा भौतिक कामना ही है, एक्सटेंशन ऑफ सकाम कर्मा। उसका एक दूसरा रूप है कि जब हम मुक्त होना चाहते हैं और भगवान में लीन होना चाहते हैं, तो हम कहाँ जाते हैं, भगवान के ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाते हैं। जब हम सकाम कर्म करते हैं कुछ पाने की इच्छा से, चाहे इस संसार में, चाहे स्वर्ग लोक में, चाहे ब्रह्म लोक तक हम चले जाएं, लेकिन वहां से प्रभुपाद बताते हैं आपको नीचे भेज दिया जाएगा। शीने पुण्य मृत्यु लोकम विशंति, आपको नीचे आना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं यहीं रहूंगा, इस संसार में भी आप ये नहीं कह सकते मैं यहीं रहूंगा, समय आने पे आपको यहां से भी भेजा जाएगा, एक दफा इस शरीर को आपको छोड़ना पड़ेगा। तो मतलब देखने की बात यह है कि इस बात को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि हम जो है यहां यात्री हैं, हम यात्रा पे आए हुए हैं, और हमारी यात्रा ऐसी है कि हमें एक जगह टिकने नहीं दिया जा रहा, हमारा बोरिया बिस्तर बांध दिया जाता है, हमारा टिकट काट दिया जाता है। तो आप ब्रह्म लोक तक चले जाओ, पाताल लोक से ब्रह्म लोक तक चले जाओ, वहां से तो आपको भेजा जाएगा फोर्सफुली, जबरदस्ती आपको भेजा जाएगा, जैसे ही कि आपके पुण्य समाप्त हो जाएंगे। तो हम ऐसी जगह जाने की इच्छा करते हैं जहां से हमें धक्के देकर के बाहर निकाला जाता है, कितनी अपमानजनक बात है। ऐसी जगह कौन जाना चाहेगा जहां से उसको धक्के देकर के बाहर निकाला जाए। इस संसार में भी आप किसी के ऐसे घर में जाना चाहोगे जहां से आपको बाहर निकाल दिया जाए? इसीलिए हम ऐसी जगह रहते हैं, हमारा अपना घर हो, जहां से हमें कोई बाहर ना करे। दूसरी बात, अगर आपने ज्ञान कांड को अपनाया है, अगर आप विमुक्त होना चाहते हो, तो आप निश्चित रूप से आप ब्रह्म ज्योति में प्रवेश कर जाओगे, और वहां से आपको जबरदस्ती नहीं भेजा जाएगा। ये मुख्य बात है, वहां से आपको जबरदस्ती नहीं भेजा जाएगा। आप वहां हजारों वर्ष तक रह सकते हो, लाखों वर्ष तक रह सकते हो, लेकिन आप स्वयं फिर आओगे, क्योंकि वहां आत्मा के लिए करने के लिए कुछ नहीं है। आत्मा सक्रिय है, आत्मा सदैव क्रियाशील है, वहां करने के लिए कुछ नहीं है। तो हजारों लाखों साल बीतने के बाद आप कहोगे इससे तो मैं वहीं भला था, वहीं भला था। तो ब्रह्म ज्योति से आप स्वयं नीचे आओगे, और ब्रह्म लोक से, स्वर्ग लोक से आपको जबरदस्ती धक्के दे करके नीचे भेजा जाएगा। तो ये जो भक्ति है, अब ये हमको देखना है कि हमारी भक्ति कौन सी हो रही है। शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहता है, सुत गोस्वामी बता रहे हैं नैमिषारण्यम में ऋषियों को, क्या बता रहे हैं? सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। हमारी जो भक्ति है वो कैसी होनी चाहिए? ये मानव समाज में हमको जब मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, तो हमारी भक्ति कृष्ण के पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अधोक्षज के चरणों में होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी, बगैर किसी के कारण के होनी चाहिए। इसीलिए करनी चाहिए क्योंकि मेरा धर्म है, मेरा स्वभाव है, जीवे र स्वरूप है र कृष्णे र नित्य दास, मैं भगवान का नित्य दास हूं, मेरे को तो भक्ति करनी ही करनी है, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। तो अहेतुकी करनी चाहिए, और अप्रतिहता मतलब हमेशा लगातार निरंतर करनी चाहिए, यह नहीं कि आज किया कल नहीं किया। तो दो बातें बताई हैं सुत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को कि हमारी भक्ति कैसी होनी चाहिए। चलो नहीं होती, ऐसी भक्ति नहीं हो रही, फिर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित महाराज को, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदार दी तीव्रे न भक्ति योगे न यजेत पुरुषम परम। कोई बात नहीं, आप अहेतु की भक्ति नहीं कर सकते, आपके अंदर कामनाएं हैं, आप उन कामनाओं को शांत नहीं कर पा रहे, तो भी कोई बात नहीं, आपको भक्ति करनी है किसकी? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की। कैसी? चाहे आपके मन में कोई कामना नहीं है, अकाम है आप, चाहे आपका मन सब प्रकार की कामनाओं से भरा पड़ा है, अकाम असर काम हुआ मोक्ष कामा उदार दी, या आपको मोक्ष की कामना है, या आप बहुत उदार बुद्धि वाले हैं, आपको तीव्रे न भक्ति योगे न, आपको तीव्रता के साथ भगवान की भक्ति करनी है। तो अब बात यह आती है कि भक्ति जो है, रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि तीन प्रकार की भक्ति होती है। एक तो उत्तम भक्ति होती है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीवलम भक्तिर उत्तमा। भक्ति उत्तमा मतलब जो ज्ञान और कर्म से अनावृतम हो, ज्ञान और कर्म का उसके ऊपर कोई पर्दा ना हो, और अनुशीलन अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, तो अनुकूल भाव से जब वह भगवान की भक्ति करते हैं, ज्ञान और कर्म से अलग हो करके भगवान की भक्ति करते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, उत्तम भक्ति। और यही हमको सीखना चाहिए, भक्ति के जो है भक्ति रसामृत सिंधु में तीन कोटियां बताई गई हैं। कौन कौन सी? साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। तीन प्रकार की कोटियां हैं। साधन भक्ति के दो भाग हैं, वैदि भक्ति और रागानुगा भक्ति। वैदि भक्ति वो होती है आपकी इच्छा नहीं है भक्ति करने की, लेकिन आप आदेश का पालन कर रहे हैं, गुरु के आदेश का पालन कर रहे हैं, आप भक्तों के आदेश का पालन कर रहे हैं, आपकी भक्ति करने की लेशमात्र भी इच्छा नहीं है, लेकिन आप पालन कर रहे हैं। जितना आपको बताया जा रहा है, आपको चार माला करनी है, आप चार कर रहे हो, आप आठ आठ सोलह सोलह, उससे आगे बिल्कुल हिल नहीं रहे आप, उसको कहेंगे वैदि भक्ति। दूसरी भक्ति है रागानुगा भक्ति। वैदि भक्ति करते करते आपके अंदर राग उत्पन्न हो रहा है, प्रेम उत्पन्न हो रहा है, अभी तो मेरे को माला करने के लिए कहा है, लेकिन आज ठाकुर जी का श्रृंगार मैं करूंगा, आज ठाकुर जी का श्रृंगार मेरे को करना है, आज मेरे को भोग लगाना है, आज मेरे को अनेक प्रकार के भगवान को व्यंजन तैयार करके देने हैं, तो ये रागानुगा भक्ति ये भी साधन भक्ति में आता। सोलह माला का जब अब मेरे को आगे बढ़ना है, सोलह माला तो कहा है, लेकिन अब मैं अठारह बीस चौबीस बत्तीस कुछ भी करूंगा, मेरे को आगे बढ़ना है, तो ये साधन भक्ति में वैदि भक्ति और रागानुगा भक्ति। उसके बाद भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति, वो आगे की स्टेजेस हैं, अभी हम उस पर नहीं जा रहे हैं। और भक्ति जो है उसके भी तीन प्रकार के रूप गोस्वामी बताते हैं, तीन प्रकार के भक्त होते हैं, तीन प्रकार के भक्तों की श्रेणियां होती हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी। तीन प्रकार की श्रेणियों को हम अपने आप को देख सकते हैं, हम कहां पर खड़े हैं। प्रथम श्रेणी क्या होती है? प्रथम श्रेणी का जो भक्त वो होता है जो प्रमाणिक गुरु से प्रशिक्षण पाकर विधि विधानों का कठोरता से पालन करता है। प्रमाणिक गुरु से प्रशिक्षण पाकर विधि विधानों का कठोरता से पालन करता है और शास्त्रों के अनुसार अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है। शास्त्रों को युक्ति तथा तर्क समेत समझकर उनमें दृढ़ता पूर्वक निष्ठा रखता है और गुरु की आज्ञा से आगे चलकर गुरु बनकर वह प्रथम श्रेणी का भक्त बन जाता है। तो सबसे पहली बात क्या है कि आप किसी न किसी गुरु के अधीन होने चाहिए और निष्ठापूर्वक आपकी भक्ति होनी चाहिए और आपको सारे तर्क मालूम होने चाहिए, भक्ति के सारे तर्क मालूम होने चाहिए, आप उसमें बहुत दृढ़ता से आगे चल रहे हो। कभी भी स्वतंत्र भक्ति नहीं करनी चाहिए, है ना, हमारा कोई ना कोई मालिक होना चाहिए, हमारा खैर खबर लेने वाला, हमारा कान पकड़ने वाला। तो इस तरीके से एक छोटी सी कथा है, एक गाय थी नदी के किनारे और वो किसी तरीके से दलदल में फंस गई। गाय दलदल में फंस गई और धीरे धीरे करके गाय नीचे जा रही है, सामने से शेर आया, शेर ने देखा गाय खड़ी है, उसके मुंह में पानी आ गया, उसने कहा आह आज तो भोजन एकदम तैयार है, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, देखता क्या है, शेर भी दलदल में फंस गया। अब शेर और गाय आमने सामने खड़े हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन आगे शेर नहीं बढ़ पा रहा। जब गाय ने देखा कि शेर आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो गाय ने मुस्कुराई शेर से, कहा अब तो तू गया, अब तेरा काम हो गया। शेर ने कहा क्या भक्ति है, तू क्या बच जाएगी, तू भी गई, तू कौन सा बच जाएगी। बोले नहीं, मैं बच सकती हूं। कैसे बचेगी? बोले देख, मेरा तो मालिक है, अभी ढूंढते ढूंढते आएगा मेरे को, और किसी ना किसी तरीके से मेरे को बचाएगा। लेकिन शेर, तेरा कोई मालिक है? बोले नहीं, मैं तो जंगल का राजा हूं, मेरा कोई मालिक कैसे हो सकता है। बोले फिर तो तू गया, फिर तो तू गया। तो इसीलिए अगर हम स्वतंत्र भक्ति करेंगे, अगर हम गुरु के अधीन नहीं होंगे, फिर आज नहीं तो हम कल गए। और थोड़ी देर में उस गाय का मालिक आया, ग्वाला, उसके गले में रस्सी डाली, कैसे न ऐसे कहकर उसको खींच के बाहर निकाल के ले गया। इसीलिए हमारा गुरु होना, गुरु कर्ण धारम भगवान कहते हैं, गुरु जो है कर्ण धारम। स्वतंत्र भक्ति नहीं करने, गुरु के अधीन रह करके, गुरु के आदेशों का पालन करके, निष्ठापूर्वक, दृढ़तापूर्वक जो आगे बढ़ते हैं, तो फिर उसको कहते हैं प्रथम श्रेणी का भक्त, भक्तिर उत्तमा। फिर है दूसरी श्रेणी का भक्त। श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि दूसरी श्रेणी का जो भक्त है, वह शास्त्रों के बल पर तर्क करने में इतना निपुण नहीं होता, उसको शास्त्रों के ऊपर इतना तर्क करना नहीं आता, उसको विश्वास तो है, उसको मालूम है जो मैं चल रहा हूं, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं पक्का हूं। लेकिन कई दफा जब विरोधी पक्ष आ जाता है, तो वो उसको उससे परास्त हो जाता है, उसके पास इतने तर्क करने नहीं आते, लेकिन इतना है उसको मालूम है, मैं चाहे इससे परास्त हो गया, चाहे मैं इससे हार गया, लेकिन फिर भी मैं अपने रास्ते को नहीं छोड़ूंगा, मेरा जो रास्ता है, जो मेरे को बताया है, वो रास्ता मेरे गुरु ने वो ठीक बताया। यह है द्वितीय श्रेणी का भक्त। और तीसरी श्रेणी का भक्त कौन सा होता है? जिसका न तो विश्वास प्रबल होता है और न ही शास्त्रों के निर्णय को वो मानता है, जिसको कहते हैं नौ सिखिया। आपने बताया आपकी तरफ हो गया, उन्होंने बताया उनकी तरफ हो गया, तो ऐसे व्यक्ति को बदला जा सकता है, है ना। उनकी भक्ति कैसी होती है? बड़ी कोमल श्रद्धा होती है, उनकी अभी दृढ़ता नहीं है। और इन नौ सिखिये जो भक्त होते हैं, इनका भी वर्गीकरण हुआ है, इनके चार चार इसका वर्गीकरण है। भगवान कहते हैं चार प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम, जना सुकीर्तन अर्जुना, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, ज्ञानी च भर्तृषवा। हे भरत, चार प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं। आर्त, जो दुखी है वो मेरी शरण में आ जाता है। आर्त कौन? कौन दुखी होकर के भगवान की शरण में आया? तो गजेंद्र का उदाहरण आता है। गजेंद्र ने भगवान को पुकारा, दुखी हो गया था, बड़ी पीड़ा हो रही थी, कृष्ण को पुकारा। आर तो जिज्ञासु, जब जिज्ञासा हुई तो 88,000 ऋषि नैमी शरणम में बैठे हुए हैं, शौनक आदि ऋषियों के साथ सूत गोस्वामी वहां आते हैं और वो जिज्ञासा करते हैं, हमें कृष्ण की लीलाओं का, कृष्ण की कथा बताओ। आए तो थे वो यज्ञ करने के लिए, 1000 बरस तक चलने वाला यज्ञ करने के लिए इकट्ठे हुए थे नैमी शरणम में। लेकिन जब सूत गोस्वामी आ गए तो उन्होंने क्या किया, जिज्ञासा की कि हमको कथा सुनाओ। तो इस तरीके से वो जिज्ञासु भक्त, गजेंद्र आर्त भक्त, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी। ध्रुव महाराज अर्थार्थी का उदाहरण है। ध्रुव महाराज अपने पिता से बड़ा साम्राज्य चाहते थे और वो आ गए मधुवन में, आकर के तपस्या करने लगे। और इस तरीके से ये लोग भगवान की भक्ति करते करते शुद्ध हो गए। गजेंद्र भी शुद्ध हो गया, उसने कहा अब मेरे को कोई चिंता नहीं, कोई इच्छा नहीं, और जो आपका ध्रुव महाराज हैं, ध्रुव महाराज भी शुद्ध होकर के बोलने लगे अब मेरे को कोई भौतिक राज्य भौतिक साम्राज्य नहीं चाहिए। और शौनक आदि ऋषि भी शुद्ध हो गए। आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भद्रशवा, तो ज्ञानी का जो है सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, ये जो चार कुमार हैं ये ज्ञानी थे, परम भगवान के धाम में गए। तो ये चार प्रकार के लोग भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो ये जो नौ सिखिया जो जो भगवान की शरण किसी कारण से लेते हैं, ये भी प्रथम श्रेणी के और दूसरी श्रेणी के भक्त बन जाते हैं। ये भी प्रथम श्रेणी के और दूसरी श्रेणी के भक्त बन जाते हैं। तो औरों की तो हम बात ही छोड़ दें। इसी प्रकार से रूप गोस्वामी बताते हैं कि जो हम सुख की कामना से, किसी भी सुख की कामना से हम भक्ति कर रहे हैं, सुख भी तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के सुख कौन से होते हैं? एक तो होता है भौतिक सुख। भौतिक सुख कैसा होता है? चपल सुख होता है, आज है कल नहीं है। भौतिक सुख की कोई गारंटी नहीं है। दूसरा सुख होता है आध्यात्मिक सुख। आध्यात्मिक सुख वो होता है जो ज्ञानी भगवान के साथ लीन होकर के जिस सुख को पाना चाहते हैं वो आध्यात्मिक सुख है, लेकिन वो भी टिकता नहीं है। उसके बाद है भक्तिमय सुख। भक्तिमय सुख ऐसा है जब हम भगवान के नाम रूप गुण लीला का आस्वादन करते हैं। और जैसे महाप्रभु कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामळे, मम जन्मने जन्मने ईश्वरे भवतात भक्ति रहतु की तोई। हमारी भक्ति, हमें धन की अभिलाषा नहीं, हमें धन नहीं चाहिए, हमें धनवान चाहिए। संसार धन के पीछे भागता है, भक्त धनवान के पीछे भागता है, जो सबसे बड़ा धनवान है। हमारे पास धन आ जाएगा, हम धन को खो सकते हैं, लेकिन धनवान को हमने स्वीकार कर लिया, वो हमारे धनवान के साथ भी रहेंगे और हमारी रक्षा भी करेगा। समझ की बात है ना, हम भी भाग रहे हैं लेकिन हम धनवान के पीछे भाग रहे हैं। तो हमारे राधा श्याम सुंदर सबसे बड़े धनवान हैं कि नहीं? हरि बोल। तो हम क्या करते हैं, हमें ये धन चाहिए, हम इस धनवान के पीछे भागते हैं। और अगर हम भगवान को स्वीकार कर लेते हैं तो आज तक को भगवान को स्वीकार करके कोई घाटे में नहीं रहा, आज तक तो कोई घाटे में नहीं रहा। इसीलिए इस श्लोक में बताया गया है कि हमको क्या करना है, संकीर्तन यज्ञ के द्वारा भगवान की भक्ति करनी है। अब कैसे करें, कैसे भक्ति करें, तो उस भक्ति को सिखाने के लिए कौन आए? गौर निताय आए उस भक्ति को सिखाने के लिए। भगवान जब आए थे उन्होंने हमारे को सैद्धांतिक ज्ञान दिया भगवत गीता के माध्यम से, हमारे को थ्योरेटिकल ज्ञान दिया, क्योंकि उस समय इतना समय नहीं था। कुरुक्षेत्र की भूमि में 45 मिनट में भगवान ने थ्योरेटिकल ज्ञान दिया, लेकिन भगवान ने बाद में सोचा इस ज्ञान को वो समझेंगे कैसे, कैसे समझेंगे, मेरे को पुनः जाना है, अब मैं सैद्धांतिक ज्ञान नहीं, अब मैं व्यवहारिक ज्ञान करके उनको बताऊंगा आपको भक्ति करनी कैसे है। तो फिर अजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलाय ताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। अजानुलंबित भुजौ, जिनकी भुजाएं कहां तक जाती हैं? घुटने तक जाती हैं। अजानुलंबित भुजौ कनकावदातो, जो क्या है एकदम पीत वर्ण के हैं, ऐसे गौर वर्ण के भगवान आए संकीर्तने कपितरो, संकीर्तन के पिता बन के आए, संकीर्तन यज्ञ के पिता बन के आए। और उनकी आंखें कैसी हैं? कमलाय ताक्षो, कमल के पंखड़ियों के समान उनकी आंखें उनके नेत्र हैं। विश्वम भरो, पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं। द्विजवरो, श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण हैं और युग धर्म का संकीर्तन धर्म का पालन करते हैं। मैं वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो, ऐसे करुणा ऐसे महावदान्याय भगवान का जो रूप है उनका मैं वंदे नमन करता हूं। तो भगवान आए यहां और उन्होंने हमें संकीर्तन करना बताया कैसे हमको संकीर्तन करना है। तो अभी हम थोड़ा सा आपको बताएंगे भगवान का एक प्रसंग चैतन्य चरितामृत से के जब भगवान चैतन्य महाप्रभु बनारस में गए और वहां उनकी निंदा हो रही थी, जो मायावादी लोग थे, जो प्रकाशानंद सरस्वती और मायावादी लोग उनकी निंदा कर रहे थे, कह रहे थे ये कैसा सन्यासी आ गया है, ये कैसा सन्यासी है जो नाचता है गाता है सड़कों पर। तो प्रकाशानंद सरस्वती कहते हैं, क्या कहते हैं, सन्यासी है इया करा नर्तना गायना भावों का सभा संगे लाना करा संकीर्तना। आप सन्यासी हो, आप ये क्या कर रहे हो, आप ऐसे मदान लोगों के साथ, आप धर्मान लोगों के साथ आप क्यों ये कीर्तन कर रहे हो। वेदांत पाठना ध्याना संन्यासारा धर्मा ताहा छाड़ी कार्य केना भावु केरा कर्मा। आपका काम है वेदांत का अध्ययन करना, वेदांत का ध्यान करना, ये सन्यासी की एकमात्र एकमात्र उसका कार्य होता है। आप ऐसे वीरान जगहों में, आप ऐसे धर्मान लोगों के साथ मदान लोगों के साथ आप ये क्या कार्य कर रहे हो। प्रकाशानंद सरस्वती बोले, तो कहां गया उसके बाद, प्रकाशानंद सरस्वती आगे कहते हैं, प्रभावे देखिया तो मां साक्षात नारायणा, आपका देखो प्रभाव, आप साक्षात नारायण देखते हो। हीन आचारा करे के ना इथे की कारणा, आप साक्षात नारायण देखते हो, आपका उज्जवल कांति देखो, लेकिन आप इतना हीन आचार कर रहे हो, आप कीर्तन कर रहे हो, आप नाच रहे हो, इसका क्या कारण है। प्रभु कहे, अब महाप्रभु कहते हैं, प्रभु कहे सुना श्रीपाद इहार कारणा, गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासन। कहा हे श्रीपाद इसका कारण सुनो, मेरे गुरु ने मेरे को मूर्ख समझा, उसने कहा तुम वेद अध्ययन और मेडिटेशन इस पे ध्यान मत लगाओ, तुम मूर्ख हो, इसलिए उन्होंने मेरे को दंड दिया, मेरे को दंड देकर के कहा ये तुम्हारे बस की नहीं है। मूर्ख तुमी तुम्हारा नहीं का वेदांत अधिकारा, कृष्णा मंत्र जपा सदा ए मंत्र सारा। तो मूर्ख हो, तुम्हारा वेदांत पे कोई अधिकार नहीं है, कृष्ण मंत्र जप करो सदा और यही तुम्हारे लिए सार है, यही मंत्र का सार है। उसके बाद कृष्ण मंत्र हैते हवे संसार मोचना, कृष्ण नामा हैते पावे कृष्णेरा चरना। कृष्ण मंत्र जपने से संसार छूट जाता है, ये सत्य बात है। अब हम लोग घबराते हैं कि हमारा संसार छूट रहा है, अरे संसार कौन सा संसार छूट रहा है, आपका वो संसार छूट रहा है जिसमें मृत्यु का दुख है, जिसमें बीमारी का दुख है, जिसमें बुढ़ापे का दुख है, जिसमें जन्म का दुख है, जिसमें आदि भौतिक ताप है, जिसमें दैविक ताप है, जिसमें आध्यात्मिक ताप है, संसार तो ये है। आपको कौन सा संसार मिल रहा है, आपको सच्चिदानंद का भगवान का संसार मिल रहा है। हम घबराते हैं, हम इस दुख रूपी संसार को छोड़ने से घबराते हैं और जो परम आनंदमयी संसार है उसको पाने से घबराते हैं। ये तो कृष्ण मंत्र हैते हवे संसार मोचना, कृष्णा नामा हैते पावे कृष्णे रचरना। अगर हम जाते हैं ना कहीं प्रचार करने और किसी को कह दे भैया कृष्ण मंत्र जपो तुम्हारा संसार छूट जाएगा, वो हमारी पिटाई कर देगा, भागो यहां से मेरा संसार छुड़ाने आए हो। तो उनको तो बड़ा प्रेम से शुगर कोटेड गोली खिलानी पड़ेगी, शुगर कोटेड शुगर में लपेट करके कि भैया ये जपो। हमें भी खिलाई थी किसी ने, अब हम भी बदला चुकाएंगे, हम भी आपको खिलाएंगे। तो इसके बाद जो है हमने बताया आपको, नामा बिनु कली काले नाही आरा धर्मा, सर्व मंत्र सर्व नामा यही शास्त्र मर्मा। तो महाप्रभु कह रहे हैं अपने गुरु को उद्धित करते हुए, ईश्वरपुरी पाद को कह रहे हैं कि नाम बिनु कली काले नाही आरा धर्मा, सर्व मंत्र सर्व नामा यही शास्त्र मर्मा। सब शास्त्रों का यही मर्म है कि आपको क्या करना है, भगवान के नाम का जप करना है। हरे नाम हरेर नाम इव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतेर अन्यथा। यही यज्ञपाना नामा लई अनुक्षण नामा लईते लईते मोरा भ्रांता हैला मना। ये नाम लेते लेते मैं मोहित हो गया हूं, मैं भ्रमित हो गया हूं, क्या करूं। उसके बाद में आगे कहते हैं महाप्रभु, कीवा मंत्र दिला गोसाई कीवा तारा बोला जपीते जपीते मंत्र करीला पागला। क्या मंत्र आपने मेरे को दे दिया, इसका कितना बल है, ये मंत्र जपते जपते मैं तो पागल हो गया, मैं तो पागल हो गया, मैं तो पागल हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही है हरि नाम। तो यहीं पे हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवतम महापुराण की, शिला प्रभुपाद की, ताई गौर प्रेमानंदे। Yes. प्रभु जी कुछ पूछना चाहते हैं। फिर नीचे आकर के फिर वो बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, अस्पताल खोलते हैं, अपने प्रसिद्धि के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं। जो ब्रह्म ज्योति से गिरते हैं फिर वो आके यहाँ अनेक प्रकार के सामाजिक कार्यों में जुड़ जाते हैं, समाज सेवा में जुड़ जाते हैं। हाँ हाँ चार जो है उसमें ज्ञान, ज्ञानी जो है भगवान कहते हैं मेरे को सबसे प्रिय है। आर तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तृषम। हाँ वो ज्ञानी है ना, ज्ञान है, भगवान को जानते हैं समझते हैं। ये रूप गोस्वामी की व्याख्या है भक्ति रसा में सिंधु में, मैंने वहीं से लिया, अपनी तरफ से नहीं बोला। अरे हाँ वो तो वो ज्ञानी बहुनाम जनते जन्मांते ज्ञानवान माम प्रबदते वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सो दुर्लभा। इसलिए बताया गया है कि ज्ञान अनावृतम, ज्ञान को छोड़ करके हम भक्ति नहीं कर सकते, इतना ज्ञान तो होना चाहिए। हो ही सुप्रीम।
लेकिन वो चार कुमार ने तो एक्सेप्ट किया कि पर्सन है भगवान।
हाँ
जो ज्ञानी होता है इंपर्सनल होता
है। हाँ
वो नहीं करते हैं,
वो भगवान के रूप को स्वीकार नहीं करता।
हाँ
ज्ञान कांड, वो ज्ञान कांड, उनका परम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति तक जाना है। देखिए ज्ञान योग है, एक ज्ञान कांड है। ज्ञान कांड अलग है, ज्ञान योग अलग है। कर्म योग ज्ञान योग से आप भक्ति योग में एंटर हो सकते हो, लेकिन ज्ञान कांड से आप भक्ति योग में एंटर नहीं हो सकते। ज्ञान कांड में आपका आके रास्ते दीवार है बस। ज्ञान कांड, कर्म कांड, विषय लभांड, विषय लभांड। हाँ, भगवत गीता में 18 अध्याय हैं, 6 अध्याय कर्म योग, 6 अध्याय बाद के ज्ञान योग और 7 से 12 भक्ति योग। भक्ति योग को छुपा हुआ भगवान ने उसको सुरक्षित रखा। तो ज्ञान कांड जो है, ज्ञान कांड वो है जो निर्वेशवादी, जो भगवान के रूप को, जो मायावादी, जो रूप को नहीं स्वीकार करते, ज्ञान कांड। ज्ञान योग नहीं है, ज्ञान योग है जिससे, जिस ज्ञान के द्वारा आप कृष्ण तक पहुंचे, वो ज्ञान योग है। कर्म कांड, कर्म योग, दोनों में अंतर है। कर्म कांड आप भगवान, कर्म कांड में आप भगवान को नहीं चाहते, आप ऊपर के लोगों को जाके भोग भोगना चाहते हैं। कर्म योग के जरिए आप भगवान को, भगवान से प्राप्त हो सकते हो कर्म योग के माध्यम से।
हरि बोल।